Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yashodhanandana Brajajanaranjana Yashodhanandana Brajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari ప్రమహంస పరివ్రాజకచారి అష్టోపనిషత్ శ్రీ శ్రీమద్భక్తివాయి గ్రేస్ ఏ శ్రీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద కీ జయ గ్రంథరా శ్రీమద్భాగవతం కీ జయ ఉపస్థిత భక్తవృంద కీ జయ ఉపస్థిత భక్తవృంద కీ జయ ఉపస్థిత భక్తవృంద కీ జయ గురు ఏమం గౌరంగ కీ జయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయం ఉదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః శ్రీమద్భాగవత్ సాత్వా స్కంధ నవమా అధ్యాయ శ్లోక నంబర్ 14 యచ్చ మన్యం అసురాశ్చ హతా త్వయాద్య మోదేత సాధు అపి వృష్టిక సర్ప హత్యా లోకాశ్చ నిర్వృత్తిం ఇతా ప్రతీయంతి సర్వే రూపం నరసింహ విభయయా జనా స్మరంతి తద్యచ్చ మన్యుం అసురస్య హతత్వయాద్య మోదేత సాధోరపి వృష్టికి సర్పహత్యా లోకాశ్చ నిర్వృత్తిమితా ప్రతియంతి సర్వే రూపం నసిమ విభయయా జనా స్మరంతి తద్యచ్చ మన్యుం అసురస్య హతస్త్వయాద్య साधोरपि वृश्चिकी सर्प हत्या लोकाश्च निर्वृतिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं न सीमा विभया जना स्मरन्ति सद्याच्च मन्युम् असुराश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधोरपि वृश्चिकि सर्पहत्या लोकाश्च निर्वृत्तिम् इथा प्रतियन्ति सर्वे रूपं न सीमा विभयया जना स्मरन्ति हिरण्यकशिपु महान असुर भी हतः मारे गए त्वया आपके द्वारा अद्य आज मोदेत आनंद ग्रहण करते हैं साधु अपि एक साधु भी वृश्चिक सर्प हत्या एक सांप या बिच्छू को मारने से लोकाः सारे लोक च निश्चित ही निर्वृत्तिम् प्रसन्नता ईता प्राप्त किए हैं प्रतियन्ति इंतजार कर रहे हैं आपके क्रोध के शांति के लिए सर्वे सभी रूपम यह रूप नरसिंह हे भगवान नरसिंहदेव विभयया उनके भय को दूर करने के लिए जनाः इस ब्रह्मांड के सभी लोग स्म स्मरंती, स्मरण करेंगे। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। मेरे प्रिय भगवान नरसिंहदेव, कृपया अब अपने क्रोध को शांत कर दो, बंद कर दो, क्योंकि मेरे पिता महान असुर हिरण्यकशिपु अब मर गए। साधु पुरुष भी एक सांप या बिच्छू के मरने में बहुत आनंद लेते हैं। इस असुर के मृत्यु पर इस असुर के मृत्यु के कारण सब दुनिया में संतुष्टि पैदा हो गई है। सबको अपने सुख का विश्वास हो गया है और वो हमेशा भय से निवृत्ति के लिए आपके इस मंगलकारी अवतार को हमेशा स्मरण करेंगे। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, हालांकि साधु पुरुष कभी भी किसी जीवात्मा को मारने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन सांप और बिच्छू जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति को मारने में वे भी आनंद लेते हैं। हिरण्यकशिपु मारे गए थे क्योंकि वह सांप और बिच्छू से भी ज्यादा खराब थे। अब भगवान को क्रोधित रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भक्त हमेशा नरसिंह भगवान के रूप को याद करके जब भी खतरे में हो तो उनके रूप को याद कर सकते हैं। फिर नरसिंह भगवान का जो अवतार है वो कभी भी अमंगल नहीं था। भगवान का अवतार जो है सब भक्तों के लिए और बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए पूजनीय और मंगलकारी होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम रामो हरे हरे। अनुवाद। हे भगवान नरसिंहदेव, अब मेरे पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई है, इसलिए अपने क्रोध को त्याग दो। साधु पुरुष भी एक सांप या बिच्छू को मारने में आनंद लेते हैं। पूरे विश्व में सब जगह पर संतुष्टि हो गई है इस असुर के मृत्यु के कारण, और वे सब आपके सुख में विश्वास रख रहे हैं और वो इस मंगलकारी अवतार को हमेशा स्मरण करेंगे भय से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए। ये श्लोक श्री प्रभुपाद लीलामृत में आते हैं कि जब श्री प्रभुपाद दौड़ी मठ में थे, मायापुर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रम में, और श्री भक्ति ठाकुर ऊपर थे बालकनी में, और उन्होंने देखा कि एक सांप आया नीचे रेंग रहा था। तो कुछ भक्त नीचे सोच रहे थे कि अभी क्या किया जाए, इसको मारा जाए कि इसको छोड़ दिया जाए। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने तुरंत आज्ञा दी, किल इट, तुरंत मार दो। और भक्तों ने गुरुदेव की आज्ञा से जो है उस सांप को मार डाला। श्री प्रभुपाद ये देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि क्यों ऐसा मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा क्यों दी, कि एक साधु को तो बहुत अहिंसक होना चाहिए, हम कहानी सुनते हैं मृगराड़ी मृगराड़ी चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतने बड़े सांप को मार रहे हैं बिना कारण के। श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे और बाद में उन्होंने श्लोक पढ़ा, मोदते साधु अपि वृष्टि की सर्प हत्या, कि साधु पुरुष भी जब कोई वृष्टि की यानी स्कॉर्पियन सांप या सर्प की मृत्यु होती है तो उसको भी बड़ा आनंद होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी प्राणी को बिना कारण नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्योंकि सांप और बिच्छू ये ऐसे प्राणी हैं कि दूसरों को तकलीफ देने वाले हैं बिना कारण। सांप कोई कारण नहीं चाहिए काटने के लिए, वो काटता है क्योंकि उसका स्वभाव है, या बिच्छू भी। तो दूसरों के हित को देखते हुए उस सर्प को मारना जरूरी होता है। शास्त्रों में भी है कि आतपाई होते हैं, महाभारत में प्रसंग आता है अश्वत्थामा का, जब अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों की हत्या करते हैं तो भीमसेन बोलते हैं कि इसको आक्रमण करना चाहिए और अर्जुन से युद्ध करते हैं तो गिरफ्तार करके ले आते हैं। तो लॉजिक दिया जाता है कि जो आतपाई है दूसरे पर आक्रमण कर रहा है, दूसरे की पत्नी का हरण कर रहा है और इस तरह के जो पाप क्रियाओं में लगा है उस व्यक्ति को मारना चाहिए, तो इसमें कोई दोष नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि सांप और ईर्ष्यालु व्यक्ति दोनों द्वेष से भरे हुए, ईर्ष्या से, मत्सर से। सांप की योनि जो है उस व्यक्ति को मिलती है जो बहुत रजोगुण तमोगुण में होते हैं, जो बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, जैसे हम कालियानाथ के बारे में सुनते हैं बहुत ही ईर्ष्यालु थे। उनके इतना शरीर था जहर में, पर उनके शरीर में इतना जहर था कि जो पास से कोई पक्षी उड़ता था तो भी जमीन पर गिर पड़ता था उनके वेपर्स के कारण, उनके सत्संग के कारण। और भगवान कृष्ण के भी सखा जो खेलते हुए वहां पर गए, वहां का जल पिया अनजाने में और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण ने देखा तो उन्होंने अपनी शक्ति से सबको पुनर्जीवित कर दिया, सब ग्वाल बालों को, और फिर स्वयं कालियानाग पर नृत्य करने लगे तो सारे जहर को निकाल दिया, उसको नष्ट कर दिया। और अंत में कालियानाग को समझ में आया कि कृष्ण भगवान है, मैं उसके शरण में आना चाहता हूं। ईर्ष्या का मुख्य कारण है कि व्यक्ति भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता। जब व्यक्ति जान लेते हैं कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं, जीवे रस रूप है कृष्ण र नित्य दास, वो व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हो सकता है। नहीं तो इस दुनिया में ईर्ष्या ही सब सब भौतिक संसार का कारण है, मत्सरता। इस दुनिया का निर्माण ही हुआ है मत्सरता के कारण, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति के पास ज्यादा ऐश्वर्य है, ज्यादा धन है, सुंदरता है, योग्यताएं हैं, तो हम ईर्ष्या करते हैं। वास्तव में कोई भी ईर्ष्या जो है वो भगवान कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है, क्योंकि सब ऐश्वर्य कृष्ण से आ रहे हैं। यद्य विभूति मत्सत्व श्रीमद ऊर्जित एवच, किसी में अगर कोई बल है, कोई सुंदरता है, कोई योग्यता है, कृष्ण कहते हैं मम तेज अंश संभव, वो मेरे ही तेज का एक छोटा सा अंश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं तो अंततः वो ईर्ष्या कृष्ण के प्रति है। श्रीमद् भागवत को निर्मत्सर नाम कथाम कहा गया है। जो व्यक्ति मत्सर से या ईर्ष्या से मुक्त है वही व्यक्ति भागवत के सही अर्थ को समझ सकता है। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को बताते हैं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि आप अनसूया ईशा से मुक्त है। तो जैसे कालियानाग ईशा से भरा हुआ था, लेकिन भगवान श्याम सुंदर जब उसके ऊपर नृत्य करने लगे तो धीरे धीरे वो मुक्त हो गया इस ईशा से। हालांकि बहुत पेनफुल था, बहुत दर्दायक था। सिर के ऊपर भगवान कृष्ण के चरण कमल हालांकि पंखुड़ियों से ज्यादा कोमल है, इसमें वही चरण कमल वज्र से ज्यादा कठोर थे, और वो कालियानाग पर नृत्य करने लगे। ऐसी हमारे हृदय में जो अनर्थ है, विशेषकर मत्सरता, ये हमें कृष्ण को पूर्ण समर्पण करने से रोकते हैं। लेकिन जब हम हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये महामंत्र का कीर्तन जो है वो जीवा के ऊपर भगवान का नित्य है, क्योंकि नाम और नामी इसमें कोई अंतर नहीं है। अभिन्न नाम नामित्वम, श्री प्रभुपाद श्लोक बताते हैं कि अभिन्न नाम नामित्वम के नाम और नामी इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं, हमारी जीवा जो कि सर्प के समान है, तार मध्य जीवा ती लोगों में सरूर मती, बहुत मुश्किल है वश में करना, वश में जाती है कृष्ण के नृत्य करने से। तो और कोई उपाय नहीं है सिवाय हरि नाम के ईर्ष्या से मुक्ति होने का। हम इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका उस बीमारी का मूल से निवारण तब हो सकता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की औषधि को ग्रहण करते हैं। जैसे चाणक्य पंडित का एक श्लोक है कि जो खल है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है और सांप है, दोनों ही खतरनाक है। खल या जो बहुत द्वेषी व्यक्ति है और सांप, दोनों बिना कारण आक्रमण करते हैं। उसमें बताते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सर्प को जो है मंत्रों के द्वारा वश में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को वश में करना जो है बड़ा मुश्किल है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को भी वश में किया सकता है मंत्रों के द्वारा, और वो है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसे व्यक्ति थे, सार्वम भट्टाचार्य। सार्वम भट्टाचार्य के दामाद का नाम था अमोघ। अमोघ हालांकि सार्वम भट्टाचार्य के दामाद हैं, अच्छे परिवार से हैं, उनके मन में बहुत ईर्ष्या की भावना थी। वो इतने ईर्ष्यालु थे कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे। प्रसंग आता है कि सार्वम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं अपने घर में प्रसाद के लिए, और उसके दौरान अमोघ, चैतन्य भट्टाचार्य को पता होता है अमोघ की स्वाभाविक प्रवृत्ति, इसलिए दरवाजे के पास खड़े होते हैं। लेकिन एक बार जब चैतन्य भट्टाचार्य किसी कार्य से बाहर जाते हैं तो अमोघ आकर निंदा करने लगते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। चारों भट्टाचार्य क्रोधित होकर हाथ में लकड़ी लेकर उसको मारने दौड़ते हैं और अमोघ दूर चला जाता है। चारों भट्टाचार्य इतने क्रोधित होते हैं कि उनको वो प्रार्थना करते हैं कि मेरी पुत्री विधवा हो जाए, अर्थात अमोघ की मृत्यु हो जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको रोक देते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप अमोघ बालक है, आप इसका बुरा मत मानो। लेकिन क्योंकि भगवान या शुद्ध भक्त के प्रति किया हुआ अपराध का फल मिलता है, इसलिए अमोघ को थोड़े समय बाद बीमारी हो जाती है, हैजा हो जाता है, कॉलेरा। उसके पूरे शरीर में बीमारी के कारण दर्द होते हैं। चारों भट्टाचार्य मुस्कुराकर अपनी पत्नी से बोलते हैं, जो हम प्रार्थना कर रहे थे भगवान ने पूरी कर ली। हमारी प्रार्थना थी कि अमोघ की मृत्यु हो जाए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए अमोघ से मिलने। महाप्रभु कहने लगे कि अमोघ, तुम्हारा हृदय जो है वो कृष्ण का वास स्थान है, कृष्ण स्वयं निवास करते हैं आपके हृदय में। ऐसे पवित्र स्थान में तुमने ईर्ष्या को क्यों स्थान दिया? ईर्ष्या को स्थान पे नहीं रहना चाहिए, और अपने स्वयं बड़े प्रेम से स्पर्श करते हुए तो प्रेम दिखाया, और भगवान की कृपा से अमोघ की बीमारी दूर होगी। जिनकी बीमारी दूर हो गई, न केवल भौतिक बीमारी आध्यात्मिक बीमारी भी, उनको अपनी गलती का आभास हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने इन गालों से भगवान की निंदा की है, तो अपने हाथों से जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे, उनके गाल फूल गए और चैतन्य महाप्रभु उनको फिर शांत करने लगे। वो सोचने लगे मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है। चैतन्य महाप्रभु बोले अमोघ तुम इसको भूल जाओ, जो भी घटना हुई बस कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम के आश्रय लेने से व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हो सकता है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे उद्देश्य है कि इस्कॉन एक ऐसा सोसाइटी हो जहां पर कंपटीशन नहीं हो, ईर्ष्या से मुक्ति हो। हर जगह पे समाज में कंपटीशन है, हर जगह पे, इन प्रोफेशनल सर्कल में डॉक्टर्स में भी कंपटीशन है, इंजीनियर्स में भी कंपटीशन है, बिल्डर्स में भी कंपटीशन है, भिखारियों में भी कंपटीशन होता है कौन ज्यादा अच्छा भिखारी है। लेकिन ये सब कंपटीशन स्पर्धा का कारण ईर्ष्या है, और ईर्ष्या की निवृत्ति भगवान के पवित्र नाम के द्वारा संभव है। प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बताते हैं कि प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोल रहे हैं कि अब जो सांप के समान मेरे पिता थे उनकी मृत्यु हो गई है, और अब भक्त जो हैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं अपने खुद के सुख का, वो हमेशा आपके मंगलमय अवतार को स्मरण करेंगे भय से मुक्त होने के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने बताते हैं कि नरसिंहदेव भगवान का अवतार है, वो हमेशा भक्त स्मरण करते हैं, विशेष करके खतरे में। जनरली हम ट्रेन में या बस में या कार में यात्रा शुरू करने से पहले नरसिंह भगवान को लोग याद करते हैं, स्पेशली अगर कोई बहुत ही स्पेशल ड्राइवर हो तो नमस्ते नरसिंह याद करते। एक्चुअली हर समय याद करना चाहिए, क्योंकि पदम पदम या द्विपदम न तेषम, अगर ड्राइवर बहुत अच्छा भी हो लेकिन सामने वाला ड्राइवर अच्छा नहीं होता, खतरा हमेशा है। दुनिया हर स्टेप पे खतरा है। इतो नरसिंह बहे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मदिम शरणम प्रपद्य, हर समय नरसिंह भगवान को याद करना चाहिए, नरसिंह भगवान की शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। 1977 में 1970 में या उससे पहले भी दो तीन बार जब श्रील प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, तो भक्तों के निवेदन पर श्रील प्रभुपाद ने स्वीकृति दी। श्रील प्रभुपाद जी ने स्वीकृति दी थी कि ये भक्त जो हैं नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। तो सब मंदिरों में समय ऐसा श्री प्रभुपाद जी की मूर्ति के पास नरसिंह भगवान की फोटो रखी जाती और प्रार्थना की जाती नरसिंह भगवान से, हे भगवान नरसिंह देव, अगर आप चाहें श्री प्रभुपाद जी की रक्षा करें, श्री प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य के लिए। तो प्रसंग हमेशा देखा जाता है कि भक्त हमेशा भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। चैतन्य लीला में भी यह प्रसंग आता है कि श्रीवास ठाकुर अपने घर में उनको चिंता होती है, एक डर होता है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे होते हैं कीर्तन के बारे में। ऐसा समाचार फैलता है कि दूसरी ओर से कई मुसलमान सैनिक आ रहे हैं और वे सैनिक जो है अब आकर आक्रमण करने वाले हैं। श्रीवास को पता चलता है, हालांकि वो स्वयं पर निर्भय होते हैं अपने लिए, लेकिन वो दूसरे भक्तों की चिंता कर रहे होते हैं और अपने घर में भगवान नरसिंहदेव की पूजा कर रहे होते हैं। जब भगवान नरसिंहदेव को याद कर रहे होते हैं तो उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने घर से बाहर निकलते हैं और श्रीवास के घर की ओर जाते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हुए जोर से पुकार रहे होते हैं, मैं वही हूं। श्रीवास इतने मग्न होते हैं उनको पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है, और चैतन्य महाप्रभु धक्का देकर दरवाजा को तोड़ देते हैं और अंदर आकर बोलते हैं, श्रीवास जिस रूप की तुम आराधना कर रहे हो वो मैं ही हूं, मेरी ओर देखो। और सिंहास मुड़ कर देखते हैं तो आश्चर्य व्यतीत हो जाते हैं। भगवान गौरंग ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया, शंख चक्र गदा और पद्म। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्रीवास तुम जिस रूप की आराधना कर रहे हो वो मैं ही हूं। श्रीवास ने भगवान को देखकर प्रणाम किया और भगवान के चरणों में कहने लगे। एक्चुअली पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीवास तुम प्रार्थनाएं अर्पण करो, और श्रीवास भगवान की प्रार्थना करने लगे कि भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, इतने समय से मैंने आपसे सेवा ली, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्ही विष्णु हो, तुम्ही यज्ञ हो और तुम्ही सब कुछ हो। इस तरह भगवान के अनेक रूप से स्तुति करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास तुम किस बात का डर है? मैं सबके हृदय में निवास करता हूं, मैं उस मुसलमान राजा के भी हृदय में निवास करता हूं। मैं अगर उस राजा के हृदय से उसको आज्ञा देता हूं तब वो आज्ञा दे सकते हैं अपने सैनिकों को कि तुम्हें गिरफ्तार करें। आपको समझ आया ये कि मैं उसके हृदय में हूं मुसलमान राजा से, और मैं मुसलमान हृदय के राजा से उनको आज्ञा देता हूं कि जाओ सैनिकों जाओ गिरफ्तार करो, तब वो आज्ञा देंगे। तुम क्यों घबरा रहे हो? श्रीवास, असंख्य जीव सब मेरे दास ही हैं। अगर वो राजा यहां पर आए तो मैं उससे मिलना चाहूंगा, नहीं तो मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा। और क्या वहां जाने के बाद भी, मेरे वहां पहुंचने के बाद भी, क्या राजा अपने गद्दी पर बैठा रहेगा? मैं उस राजा से कहूंगा कि हे राजन, अपने मुल्ला और काजी को बुलाओ और उनसे कहो अपने कुरान से पढ़ के सुनाए, उनसे कहो कि हाथी और घोड़े और जानवर और पक्षियों को एकत्र करके उनको भगवत प्रेम प्रदान करें। लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। फिर मैं एक पागल हाथी को पकड़ कर ले आऊंगा, फिर मैंने पक्षियों को और जानवरों को पकड़ कर ले आऊंगा और मैं उनको कृष्ण नाम दूंगा और उनके आंखों से आंसू आने लगेंगे और कृष्ण प्रेम प्रकट करने लगेंगे। ये देखो श्रीवास, ऐसा कहकर उन्होंने श्रीवास की भतीजी जिसका नाम था नारायणी, 4 साल की छोटी लड़की, उसे कहा बोलो नारायणी, बोलो कृष्ण कृष्ण। नारायणी जोर से बोल रही थी कृष्ण 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 बोलकर नारायणी की आंखों से आंसू आने लगे, वो शरीर की जमीन में लौटने लगी। यही नारायणी भाग्यशाली थी जिनके पुत्र के रूप में स्वयं व्यासदेव प्रकट हुए, वृंदावन दास ठाकुर, जिनका तिरुभाव दिवस पिछले महीने था, जिनका आविर्भाव दिवस इस महीने में। नारायणी के बारे में कहा जाता है जिसको महाप्रभु के उच्चिष्ट प्राप्त हुए थे। कुछ कुछ भक्त थे जो बहुत स्पेशल थे गौर लीला में, उसमें एक नारायणी थे। बाकी कालिदास की तरह से ट्रिक करके प्रसाद लेते थे, लेकिन नारायणी को महाप्रभु स्वयं खिलाते थे। दूसरे भक्त इच्छा करते थे भगवान के चरणों की धूल मिले, लेकिन शिवानंद सेन के पुत्र को स्वयं महाप्रभु अपना अंगूठा देते हैं चूसने के लिए। ऐसे बहुत दुर्लभ होता है नहीं, पर्सनली ऐसे भगवान के पास, भगवान की कृपा अगाध है। जो ब्रह्मा और शिव के लिए दुर्लभ है वो श्रीवास, श्रीवास के दास दासी, उनके भाई, भाई के पत्नी, उनके बच्चे, सबको कृपा प्राप्त हुई, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। एक भक्त से संबंधित होने से भगवान की कृपा आसानी से मिल जाती। सर्वम भट्टाचार्य के संग के कारण, गोपीनाथ आचार्य के संग के कारण सार्वम भट्टाचार्य को कृपा मिल गई, सार्वम भट्टाचार्य के संग के कारण अमुक को कृपा मिल गई, दामाद और जीजा जी सब संबंध में। तो सार्वम भट्टाचार्य को जब पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने अमुक को ठीक कर दिया थी बीमारी से, सार्वम भट्टाचार्य से दुखी हुए, बोले इसको मरने देना चाहिए था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्षमा कर दिया। श्रीवास के घर में एक टेलर थे, मुस्लिम टेलर, उसको भी भगवान के दर्शन हुए। और आप सब जानते हैं वो दूध पीने वाले ब्राह्मण की कहानी, ब्रह्मचारी जिसको कृपा प्राप्त थी, भगवान से संबंधित होने का फल है।
इस तरह से कृपा दिखाकर फिर महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास किसी भय आचे, अभी भी डर है आपके पास? डर आपके हृदय में अभी भी डर है? श्रीवास बोले, अब मुझे कोई डर नहीं है, अब ये काल और मृत्यु और टाइम डेथ और यमराज किसी का भी डर नहीं है, मैं घबराऊंगा नहीं, बस मैं आपका नाम पुकारूंगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं, डिवोटीज कैन ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्म ऑफ नरसिंह देव वेन दे आर इन डेंजर एंड देयरफॉर द अपीयरेंस ऑफ नरसिंह देव वॉज नॉट एट ऑल इनऑस्पिशियस। भगवान नरसिंह अवतार अमंगल नहीं है, सर्वमंगलमय है भगवान नरसिंह देव, सर्वमंगलमय। भगवान नरसिंह देव प्रकट होने के बाद वो नवदीप गए मायापुर में, उनका मालूम था कलयुग में आने वाला हूं मैं फिर से गौरंग महाप्रभु के रूप में, तो उनको लगा शायद थोड़ा एक घूम के एक बार सर्वे कर लूं कहां पर आने वाले, तो नवदीप की भूमि में आए और थोड़े समय वहां पर रहे। जब देवताओं को पता चला कि भगवान नरसिंहदेव आ रहे हैं, उन्होंने अपने अपने क्वार्टर्स बनाए वहां पे। देवताओं को क्वार्टर्स बनाने के लिए जैसे आपको टाइम लगता है लैंड लेना, परमिट लेना, उसके बनाना एक दो साल लग जाते हैं, देवताओं ने तुरंत बना दी। उच्च हाट बोलते हैं जगह को, आपने देखा है स्थान नरसिंहपल्ली, नरसिंहपल्ली यहाँ पे नरसिंह भगवान है, देखा है? एक बार महाराज ले गए थे हमको, रात के समय हम लोग गए थे, माता प्रसाद प्रभु जी ने देखा नहीं नरसिंह भगवान का, वहां पर अभी भी एक नरसिंह भगवान की बहुत प्राचीन मूर्ति है। तो नरसिंह भगवान वहां पर कुछ समय रहे, अभी अभी उन्होंने हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन किया था, और भगवान नरसिंहदेव बिना ग्लव्स के ऑपरेशन करते हैं उनके हाथ में भी रक्त लगा हुआ था, तो वहां पर एक कुंड है जहां पर उन्होंने अपने हाथ को धो लिया और कुंड का पूरा पानी लाल हो गया उस समय, वो कुंड अभी भी है, अभी तो पानी नॉर्मल है लेकिन पानी लाल हो गया। तो नरसिंहपल्ली उस स्थान को कहा जाता। फिर भगवान नरसिंहदेव चले गए वहां से वापस अपने धाम में। इसके बीच में उन्होंने एक और एक असुर को मारा जिसका नाम था नंबुची। नंबुची ये राक्षस ने भी बहुत तपस्या की थी, राक्षस तपस्या करने में बहुत माहिर होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि तपस्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन अगर वो तपस्या भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए की जाए तो बहुत अच्छी है। हिरण्यकशिप ने इतनी मेहनत तपस्या की थी, हजारों साल तक वो खड़े हुए थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। नंबुची ने तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि मेरे को कोई भी अस्त्र के द्वारा नहीं मारा गया, गीला या सूखा, और वो एक गुफा में छिपके बैठे थे मंगलगिरी के पास जो कि आजकल विजयवाड़ा के पास में है, और उस समय इस गुफा में छिपकर बैठे थे भगवान नरसिंहदेव, वहीं पर आए अहोबिलम से, अहोबिलम से विजयवाड़ा पास में ही है, पास में करीब 200 किलोमीटर है। और सोचिए नरसिंह भगवान का साइज क्या था कि उनके जो बाल हैं वो बादलों को स्पर्श कर रहे थे, ऐसे भयानक और साथ साथ सुंदर रूप। भगवान के सब रूप सुंदर होते हैं अपने अपने तरीके से, जन्म कर्म के में दिव्यम एवं योग व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुवाचनम्। या प्रभुपाद जी की भाषा में जन्म कर्म से में दिव्यम एवं जो जाना की तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति कौन थे प्रभुपाद जी कई बार ऐसे बोलते। तो भगवान जब वराह रूप में आते हैं या मत्स्य रूप में आते हैं, जनरली इतना सुंदर नहीं माना जाता वराह सुअर का रूप, लेकिन जब भगवान उस रूप में आते हैं तो सुंदर होता है, क्योंकि भगवान सब प्रकार से सुंदर है हर तरीके से। तो भगवान नरसिंहदेव वहां पर पहुंचते हैं, कुछ ही कदम उनके लिए तो कुछ ही कदम है, 200 किलोमीटर ही उनके लिए एक शायद एक पैर होगा, और नंबुची को पकड़कर उसका वध कर देते हैं, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि उसको गीला या सूखा कोई अस्त्र से नहीं मारा जाएगा, भगवान उसके लिए एक फेन जो झाग होती है फोम उससे बने हुए चक्र से उसका अंत कर देते हैं। यहां पर मंगलगिरी में भगवान को शांत करने के लिए देवताओं ने अमृत अर्पण किया सत्ययुग में। त्रेता युग में क्योंकि अमृत नहीं मिलता तो घी अर्पण किया, और द्वापर युग में घी मिलना मुश्किल है तो दूध अर्पण किया, और कलयुग में और भी लोग एडवांस्ड हो जाते हैं तो सुविधाएं बहुत कम होती है, तो घी भी नहीं मिलता तो दूध अर्पण किया जाता, सॉरी दूध भी नहीं अर्पण मिलता तो पानी गुड़ पानी अर्पण करते, गुड़ पानी। इस तीन दिन के प्रवचन के दौरान श्री राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि भगवान को जो भोग लगाया जाता है एक्चुअली भगवान का विग्रह जो है वो पर्वत के अंदर है, बस एक होल है, ऊपर मुकुट लगाया नरसिंह भगवान के मुंह जैसा तो उसे लगता है शेष भी नरसिंह जैसे, लेकिन अगर मुकुट निकाल दें तो विश्वरूप दर्शन बोलते हैं, तो खाली एक होल जैसे है पर्वत के बीच में। और साइंटिस्ट लोगों ने जानने का प्रयास किया कि जो भी अमृत अर्पण किया जाए दूध अर्पण किया जा रहा है वो कहाँ पर है पता ही नहीं चलता, क्योंकि बस वो चला जाता है अंदर पर्वतों के बीच में। तो जितना भी जो भी ऑफरिंग हम लेकर जाते हैं भगवान उसका आधा स्वीकार करते हैं, और वहां के पुजारी दिखाते हैं कि जब शंकर लेकर 10 लीटर ले जाते हैं तो 5 लीटर अर्पण करने के बाद गड़गड़ की पेड़ जैसी आवाज सुनाई पड़ती है, मतलब बचा हुआ जो है वो महाप्रसाद है वहां ले जा सकते। मंगलगिरी के ही पास में ये जो मंदिर जो मैं बता रहा हूँ जहां पर भगवान नरसिंह देव ने मेम्बुची का वध किया, इस पर पहुंचने के लिए करीब 600 सीढ़ियां चढ़ने पड़ती हैं। श्री भक्ति सिद्धांत तथा ठाकुर ने सीढ़ियों के बीच में एक मंदिर की स्थापना एक छोटे से मंदिर की स्थापना की है जहां पर चैतन्य महाप्रभु के पदचिन्हों की स्थापना की गई है, तो वो स्थान अभी भी है, महाप्रभु के पदचिन्ह वहां पर है। नीचे पर्वत की शुरुआत में एक प्राचीन मंदिर है जिसकी स्थापना युधिष्ठिर महाराज ने की थी अपने वनवास के दौरान, जो भ्रमण कर रहे थे वो तो दक्षिण भारत भी आए थे, और यहाँ मंगलगिरी के पास में जो है उन्होंने नरसिंह भगवान के मूर्ति की स्थापना की थी। मंगलगिरी को बहुत ही पवित्र क्षेत्र माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आने से व्यक्ति यमराज के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्ट कहानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी कहानी है कि ऐसे कहानी बताई जाती है कि जो भी व्यक्ति पापी भी होते हैं कई बार यमराज या उनके दूत उनको यहाँ पर लेकर आते यम लोग जाने के रास्ते में पहले, और वहीं से मुक्त कर देते थे। यानी अगर कोई व्यक्ति पापी हो पापी भी हो अगर मंगलगिरी के इलाके में पहुंचता है तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। सब तीर्थों का ये प्रभाव होता है, जैसे तिरुपति को वेंकट क्षेत्र कहते हैं, वेन वेंकटेश्वर या वेंकटगिरी बोलते हैं, सप्तगिरी या, तो उसमें वेन का मतलब पाप होता है और कट यानी नष्ट करना, तो वेंकट यानी जो सारे पापों को नष्ट करने वाले। और एक कहानी है जो मैं कल बताऊंगा डिटेल में कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त होते हैं नरसिंहानंद ब्रह्मचारी, नरसिंह भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो ऐसे हम बहुत सारे प्रसंग देखते हैं। एक और घटना है गौर लीला में जब श्रीवास ठाकुर बृहद विष्णु नाम पढ़ रहे थे और उसमें एक नरसिंह भगवान का नाम आया, जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो नरसिंह भगवान के मूड में आ गए और एकदम उग्र नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मारने से पहले जो रूप था वो रूप, और अपने हाथ में गदा लेकर इधर उधर घूमने लगे शिवास के आंगन के आसपास को देखकर सब लोग डर के मारे भाग गए, भक्त भी भाग गए सब इधर उधर। और फिर उसके बाद महाप्रभु अपनी बारी चेतना में आए, और फिर उन्होंने शिवास से पूछा, शिवास मैंने कोई अपराध किया, मैंने सबके मन में डर पैदा किया, ये तो बहुत अपराध है। शिवास बोले नहीं, जिसने आपके रूप को देखा वो सारे डर से मुक्त हो गए। देखिए श्रील प्रभुपाद जी कंफर्म कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि The Lord's appearance is always worshipable and auspicious for all sane persons and devotees. भगवान का अवतार जो है सब बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए और भक्तों के लिए पूजनीय है और मंगलकारी है. सारे अवतार और विशेष करके नरसिंह भगवान का अवतार. कई मंदिरों में गणेश जी की पूजा की जाती है विघ्नों का नाश करने के लिए. और वृंदावन में भी कई मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति है. श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भी ऐसा बताते हैं कि अच्छी चीज है अगर कोई गणेश जी की पूजा करते हैं. लेकिन स्वयं गणेश जी को ये शक्ति कहां से मिलती है विघ्नों को दूर करने की. ये पाद पल्लवम युगम विधाय कुंभ वंदे प्रणाम समय से घनाधिराज विज्ञान विहंतम नमस्ते जगत्रयस्य गोविंद महादिकेश. शक्ति जो है ये गणेश जी को नरसिंह भगवान से प्राप्त होती है. भगवान नरसिंह देव के चरणों को अपने सिर पर धारण करते हैं. इसलिए हम भी भक्ति में प्रगति करने के लिए नरसिंह भगवान को स्मरण करते हैं. नाम जब शुरू करने से पहले या जप करने के दौरान भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि इस भक्ति के इस रूप में आने वाले जितने भी बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाएं, सारे अपराध दूर हो जाएं. जैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया वैसे हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अनर्थों को अंत कर दें, जिससे कि हम कृष्ण भक्ति के मार्ग पर सुदृढ़ता के साथ प्रगति कर सकें. अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान आप तो अजीत हो, आपको कोई नहीं पराजित कर सकता, लेकिन मैं आपसे डरता नहीं हूं. श्री प्रभुपाद जी के पहले श्लोक में कहते हैं, जो भक्त हैं वो डरते नहीं हैं भगवान के इस रूप से. मैं आपके इस रूप से नहीं डरता, मैं आपकी आंखों से नहीं डरता, और जो आपके शार्प पिंचिंग टीथ हैं दांतों से नहीं डरता, गले में जो माला है आपके इंटेस्टाइन्स की, हिरण्यकशिपु की अंतड़ियों की माला, मैं उससे भी नहीं डरता, और आपके पूरे जो दाढ़ी है उसमें जो खून लगा हुआ है मैं उससे भी नहीं डरता. और फिर आपकी जो गरजना है, आपकी गरजना इतनी शक्तिशाली है कि हाथी भी दूर भाग जाते हैं, उससे भी मैं नहीं डरता, मैं आपके नाखून से भी नहीं डरता. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कॉमेंट करते हैं, भगवान नरसिंह देव का अवतार अभक्तों के लिए डर पैदा करने वाले, अभक्तों के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब करने वाला नहीं है. उदाहरण देते हैं शेर का. शेर जो है दूसरे जानवरों को डर पैदा करते हैं. जैसे शेर गरजता है हरी हरी, या जो भी आवाज कहते हैं. रूप गोस्वामी एक आशीर्वाद देते हैं हमको, जो शेर के गरजने से हाथी दूर हो जाते हैं वैसे ही क्या बताते हैं वो हरि का नाम, वो भी करेक्ट है, लेकिन एक स्पेशल चीज है शायद कल बताया था मुझे याद नहीं. गौर सिंह, जब गौरंग महाप्रभु के सिंह हमारे हृदय में प्रकट होते हैं तो एलिफेंटाइन वाइसिस, वाइस यानी पाप की वृत्ति, मराठी में वाइट गोष्ट, जो हमारे हृदय में गंदगी है वो दूर हो जाए. हरि बोल प्रभु ऐसे बैठे तो नींद नहीं आएगा सर. तो जो हमारे हृदय में जो गंदी चीजें हैं वो दूर हो जाते हैं. तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब शेर गरजते हैं, हाथी और दूसरे जानवर भी भाग जाते हैं, लेकिन शेर के नन्हे मुन्ने और घबराते नहीं, बड़े बड़े हाथी चले जाते हैं और छोटे बच्चे देख के बोलते हैं पापा हरि बोल, हमको कोई डर नहीं लगता. इसके बाद में श्रीधर स्वामी ने एक सुंदर श्लोक रचना की है. जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो कुरुक्षेत्र के बाद नेक्स्ट स्टॉप जहां रुके वो है विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम में जो विग्रह है उनका नाम है जियाड़ नरसिम्हा.